मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत खजूर रविवार पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रोताओं, चालीसा काल की आध्यात्मिक यात्रा तय कर अब हम पुण्य सप्ताह में पहुंच चुके हैं। पुण्य सप्ताह कैथोलिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है जब प्रभु येसु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान की यादगारी मनाई जाती है। यह येसु के जीवन के अंतिम समय की यादगारी है। पुण्य सप्ताह की शुरुआत खजूर रविवार से होती है। खजूर रविवार को औपचारिक रूप से दुख भोग रविवार भी कहा जाता है। यह प्रभु येसु ख्रिस्त के एक विजयी राजा के रूप में यरूशलेम प्रवेश की याद दिलाता है जहां बाद में उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। शहर में प्रभु येसु के जुलूस का वर्णन बाइबल में संत मत्ती, संत मार्कुस, संत लूकस और संत योहन करते हैं। सुसमाचार लेखक बतलाते हैं कि यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के पास बेतफगे से येसु ने एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया। भीड़ उनके सामने सड़क पर खजूर की डालियां बिछा रही थी और अपने राजा के रूप में यरूशलेम में उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने यह कहते हुए प्रभु का जय जयकार किया, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोस्वर्ग में होसन्ना। पुराने व्यवस्थान में जकरिया के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 में खजूर रविवार की भविष्यवाणी की गई है। हे सियोन की पुत्री आनंद मना, हे यरूशलेम की बेटी जय जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, वे न्यायी और विजयी हैं, वे विनम्र और एक गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार हैं। खजूर रविवार को मनाने की शुरुआत यरूशलेम में चौथी शताब्दी में हुई थी जिसका वर्णन पेरेग्रिनाचे इथेरिया की यात्रा वृत्तांत में किया गया है। इथेरिया की तीर्थयात्रा में ख्रिस्त तीर्थयात्रियों का एक व्यक्तिगत लिखित विवरण शामिल है। आठवीं शताब्दी की बोवियो सैक्रामेंटरी पश्चिम में समारोहों का सबसे पहला साक्ष्य प्रदान करता है जिसमें खजूर के पत्तों को आशीष देने की प्रथा भी शामिल थी जो आज भी जारी है। खजूर रविवार की धम्म विधि खजूर की डालियों पर आशीष से शुरू होती है। पुरोहित प्रार्थना करते हुए डालियों पर आशीष प्रदान करते हैं। उसके बाद खजूर की डालियां लिए जुलूस की जाती है। मध्ययुग तक खजूर समारोह की प्रथा काफी प्रचलित हो चुकी थी। उस समय एक गिरजाघर से जुलूस शुरू होती, दूसरे में खजूर को आशीष दी जाती और जुलूस को आगे बढ़ाते हुए वापस पहले गिरजाघर में लौटा जाता था। इसके बाद तीन उपयाजक ख्रिस्त के दुख भोग का पाठ करते थे। 1955 में पोप प्यूस 12वें और 1969 में पोप पॉल 6वें ने रोमन कार्तिक धर्म विधि में सुधार करके आधुनिक खजूर रविवार को सरल बना दिया। आज धम्मविधि की शुरुआत खजूर की आशीष एवं जुलूस से होती है जिसके बाद दुख भोग वृत्तांत का पाठ किया जाता है। यदि खजूर ना हो तो उसके स्थान पर दूसरी डालियों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे इटली में जैतून की शाखाएं और पोलैंड में पूसी विलो। आशीष की गई डालियों को पौत्र वस्तु के रूप में विश्वासी अपने घर ले जाते हैं, बाद में उसे अगले वर्ष के राख बोध की राख के रूप में प्रयोग करने के लिए जला दिया जाता है। खजूर रविवार प्रभु येसु ख्रिस्त को एक राजा के रूप में सम्मान देता है। आइए हम जानें कि वे कौन से चिन्ह हैं जो उन्हें राजा के रूप में प्रकट करते हैं। पहला, ईश्वरजन हमें बतलाता है कि जब यीशु शहर में प्रवेश कर रहे थे तो लोगों ने खजूर की डालियां ली, उन्हें हवा में लहराया और यीशु के सामने जमीन पर बिछा दिया। खजूर की डाली अच्छाई और जीत का प्रतीक थी। प्रभु ने उस अंतिम जीत को मृत्यु पर जीत कर पूरा किया। दूसरा, यीशु ने गधे पर सवारी करना चुना, जिससे नबी जकरिया की भविष्यवाणी पूरी हुई। बाइबल के इतिहास में राजाओं या महत्वपूर्ण लोगों का गधे पर सवार होकर जुलूस निकालना आम बात थी। गधा शांति का प्रतीक था। इस तरह यीशु ने याद दिलाया कि वे शांति के राजकुमार हैं। तीसरा, जब लोग दाऊद के पुत्र को होसन्ना के नारे लगा रहे थे तो वे राजा के रूप में ख्रिस्त का जय जयकार कर रहे थे। तब उनके मन में एक सांसारिक राजा की प्रतीक्षा थी, लेकिन ईश्वर के पास उन सभी के लिए सच्चा उद्धार लाने का एक अलग तरीका था। चौथा, बाइबल कहता है कि यीशु यरूशलेम के लिए रोए। थोड़े समय की प्रशंसा के बाद यीशु अपने दिल में जानते थे कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वही लोग उनसे मुख मोड़ लेंगे, उन्हें धोखा देंगे और उन्हें क्रूस पर चढ़ा देंगे। इस सच्चाई से उनका दिल टूट गया और उन्हें महसूस हुआ कि लोगों को एक उद्धारकर्ता की कितनी आवश्यकता थी। और पांचवा, खजूर रविवार हमें याद दिलाता है कि प्रभु येसु का शासनकाल किसी मनुष्य के दिमाग की कल्पना या योजना से परे है। आज की दुनिया में मनुष्य अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश करता है, जबकि ईश्वर ने मृत्यु पर अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए खुद अपने पुत्र को भेजा। यही महानता है जिसके कारण हम इस सप्ताह को मनाते हैं। ख्रिस्त के सर्वोच्च बलिदान द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। आइए हम इस पौत्र सप्ताह को अच्छी तरह मनाने के लिए प्रभु येसु ख्रिस्त से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें अपनी ज्योति प्रदान की है और अपने बेटे को हमारी मानवीय कमजोरियों में हमारे पास भेजा है। जिस राह पर हम चल रहे हैं उस पर चलने के लिए हमारी आंखें खोल दे, ताकि हम उन्हें आते हुए देख सकें और शुद्ध मन से उनकी स्तुति कर सकें, उनके क्रूस के मार्ग पर चलते हुए उनके पुनरुत्थान में भाग ले सकें। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत खजूर रविवार पर एक चर्चा सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका आस्था। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, आस्था का तात्पर्य किसी व्यक्ति, चीज या अवधारणा में भरोसा या विश्वास से है। धर्म के संदर्भ में आस्था को ईश्वर में या धर्म के सिद्धांतों में या शिक्षाओं में विश्वास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानव जीवन में प्रत्येक मनुष्य के समक्ष अनेकों परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों का प्रभाव कैसा और कितना पड़ेगा यह पूरी तरह से हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। चीजें वही रहती हैं, पर नजरिया बदलने से पूरा परिणाम बदल जाता है। जीवन में सकारात्मक विचार उस इंसान के पास आता है जो ईश्वर की योजना में विश्वास करता है, और यही तो है आध्यात्मिकता। यह आध्यात्मिकता उसे बताती है कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख, जीवन मरण ईश्वर के हाथों में है, और ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अतः ईश्वर पर अटल विश्वास रखने की जरूरत है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका आस्था।
क्या बात है संकेत, तुम आज फिर परेशान से लग रहे हो, क्या बात है?
अब तुम तो मेरी परेशानी का कारण जानती ही हो मधु।
अरे तो तुम अब तक उसी बात से परेशान हो, जरा समझा करो संकेत, यही तो जिंदगी है, कभी धूप कभी छांव, कभी खुशी कभी गम।
कहना आसान होता है मधु, लेकिन सहना मुश्किल होता है। तुम्हारी परेशानी में मैं भी तो यही दिलासा दे सकता हूँ, लेकिन परेशान तो वही होता है ना जिस पर बीतती है।
मैं मानती हूँ संकेत कि रोशनी दीदी का रिश्ता एक जगह बड़ी उम्मीद से तय हुआ था, लेकिन फिर लड़के वालों ने ही मना कर दिया। सच में 30 साल की उम्र में दीदी के लिए ये रिश्ता किसी वरदान से कम नहीं था। फिर दीदी में उम्र ज्यादा होने के अलावा कोई कमी भी नहीं है। चिंता ना करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा।
क्या ठीक हो जाएगा, कितने सालों से दीदी की बात कहीं जमी नहीं रही और जमी तो बिखर गई। कितना विश्वास किया था मैंने भगवान पर, कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने, मर गए, क्या किया तुम्हारे भगवान ने।
ये तुम क्या कह रहे हो संकेत, कम से कम भगवान के लिए तो ऐसा मत कहो।
क्यों ना कहूँ मैं, आखिर भगवान होता ही किस लिए? इसलिए ना कि जो उस पर आस्था रखते हैं, उसे मानते हैं, उसे पूछते हैं, उनकी प्रार्थना सुने, उनका मांगा हुआ वरदान दे। लेकिन नहीं, होता हुआ काम तुम्हारे भगवान ने बिगाड़ दिया है।
नास्तिकों की तरह बातें कर रहे हो तुम।
नास्तिकों की तरह नहीं, अब मुझे नास्तिक ही समझो तुम। अब तुम्हारे भगवान में मेरी कोई आस्था वास्ता नहीं है, समझी तुम।
संकेत प्लीज जरा समझदारी से काम लो।
समझदारी से ही काम ले रहा हूँ।
हे भगवान, क्या करूँ मैं?
न तुम कुछ कर सकती हो, न तुम्हारा भगवान कुछ कर सकता है।
मधु, तुम मुझे पूरी बात बताओ। संकेत की दीदी रोशनी है, उनके लिए कई साल से, यानी 24-25 साल की उम्र से उनके लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन कहीं बात जमती भी नहीं थी। इसी चक्कर में अब वह 30 साल की हो गई हैं। एक जगह उनकी बात जम भी गई और टूट भी गई। बस इसी बात को लेकर संकेत ने भगवान को दोषी ठहराकर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया।
अच्छा फिर?
अरे क्या बताऊं रिबेका, तुम्हें भी ताजुब होगा, संकेत ने तो अपने आप को नास्तिक बना लिया है। रोज सुबह भगवान की पूजा करने वाला संकेत अब नास्तिक बन गया है।
विश्वास नहीं होता मधु, तुमने संकेत को समझाया नहीं?
मैं तो हर तरह से समझाकर हार गई हूँ रिबेका, लेकिन वह है कि समझने को राजी ही नहीं होते।
ठीक है, तुम एक काम करना, अपने पति को लेकर कल शाम को हमारे घर आ जाना, शायद मेरे पति मॉरिस उन्हें समझा सके।
ठीक है, तो फिर कल शाम हम तुम्हारे यहाँ आते हैं।
और सुनाओ मॉरिस।
सब बढ़िया यार, ईश्वर की मेहरबानी है।
क्या मजबूरों की तरह ईश्वर ईश्वर कर रहे हो, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है?
भरोसा खुद पर भी है और अपने ईश्वर पर भी है।
चलो अच्छा है, जिस दिन तुम मेरी तरह ईश्वर से मुंह की खाओगे ना, तो ईश्वर ईश्वर करना अपने आप छोड़ दोगे।
क्या संकेत भाई, कैसी बात करते हैं आप।
बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाभी, मैंने ईश्वर से अपनी बहन का सुख मांगा था, लेकिन उसने नहीं दिया। बस तब से ईश्वर पर मेरी आस्था खत्म हो गई है।
सुना आप लोगों ने, अब ये नास्तिक बन गए हैं।
मगर फिर भी ईश्वर को तो मान ही नहीं रहे हैं।
वो कैसे भैया?
हाँ हाँ बताना जरा किसे।
आस्तिक कहता है ईश्वर है और नास्तिक कहता है नहीं है। एक हाँ कहता है और एक ना कहता है, लेकिन बात दोनों ही ईश्वर की करते हैं।
बिल्कुल सही कहा तुमने मॉरिस,
मगर मैं तो यही मानता।
देखो संकेत, तुम्हारी आस्था सिर्फ ईश्वर से कुछ पाने ही पाने पर निर्भर करती है और करती थी, और ऐसी आस्था हमेशा कमजोर ही होती है, जो ईश्वर से मांगी हुई चीज न मिलने पर टूट जाया करती है।
सही बात है।
क्या सही बात है? तो फिर ईश्वर होता किस लिए? भक्त उससे मांगता है और वो दे देता है।
लेकिन क्या मांगने और पाने के लिए अपने ईश्वर पर आस्था रखना सही है?
मान लो अगर किसी बेटे ने अपने बाप से कुछ मांगा और बाप ने उसे नहीं दिया, तो क्या बेटा अपने बाप को बाप मानने से इनकार कर देगा?
हो भी सकता है।
हो सकता है, लेकिन है नहीं।
देखो संकेत, दो बातें हो सकती है, या तो ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, या फिर वो तुम्हारी दीदी के लिए तुम्हारे मांगे और चाहे गए सुख से भी बड़ा सुख देना चाहता हो।
लेकिन ऐसा क्यों?
क्योंकि ईश्वर बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा।
तुमने बिल्कुल सही कहा रिवेका, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये बात केवल ईश्वर ही जानता है और उसी हिसाब से वह हमारी मांगे पूरी करता है।
सच कहा भैया आपने।
तो फिर किसी को बिना मांगे देना और किसी को मांगने के बाद कुछ न देना, ये ईश्वर का कैसा न्याय? और
इसके लिए तो संकेत में ये कह सकता हूँ कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है,
और उसकी अच्छाई को हम एकदम समझ नहीं पाते।
सुन लिया संकेत तुमने?
सुन तो लिया मैंने, लेकिन इन बातों से मेरी आस्था फिर से ईश्वर पर जमने वाली नहीं है।
हम सब उसकी रचना है, उसके खिलौने हैं, और ईश्वर अपने खिलौनों से इसी तरह खेलकर उन्हें सुरक्षित रखता और सुख देता है। तुम भी इंतजार करो संकेत, वह अपनी महिमा जरूर दिखाता है। आओ भाई संकेत, आओ।
नमस्ते भाभी।
बैठो।
मॉरिस, उस दिन तुमने बिल्कुल सही कहा था, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है।
अरे वाह, क्या अच्छा किया है ईश्वर ने।
मेरी दीदी की एक दूसरी जगह एंगेजमेंट हो गई है और अगले महीने शादी भी है, सबको चलना पड़ेगा।
चलेंगे संकेत भाई, लेकिन घर वर कैसा है?
पहले जहाँ से बात टूटी थी उनसे घर और वर दोनों अच्छे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा था मॉरिस, ईश्वर सचमुच मेरी परीक्षा ले रहा था, और दीदी की पुरानी बात इसलिए टूटी थी क्योंकि उससे अच्छा घर और वर वो दीदी को देना चाहता था।
तो मानते हैं ना आप कि ईश्वर ही जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है?
मानता हूँ।
इसीलिए वह हमें उसी हिसाब से देता है, हमारी मांग पूरी करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना संकेत, आस्था का अर्थ केवल ईश्वर से मांगना और पाना ही नहीं है, कि पाया तो आस्था रखी और नहीं पाया तो आस्था तोड़ दी।
समझ गया मैं।
ईश्वर पर हमारी आस्था बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह की आस्था बच्चे अपने माता पिता पर रखते हैं, क्योंकि माता पिता ही जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा।
भाभी, अब तो भगवान पर मेरी आस्था और भी पक्की हो गई है।
कितनी पक्की?
इतनी पक्की कि अब कोई भी व्यक्ति कोई बात मेरी आस्था को तोड़ नहीं सकती। थैंक यू मॉरिस, तुमने मुझे सिखाया है ईश्वर की मर्जी जानना और उसकी पुकार सुनना। अब तो मेरा जीवन ही बदल गया है।
जो लोग ईश्वर की मर्जी और उसकी इच्छा को जान लेते हैं, उसकी पुकार सुन लेते हैं, उनका जीवन इसी तरह से बदल जाता है। फिर ईश्वर पर उनकी आस्था और बढ़ जाती है।
आस्था। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे दिव्या शूलिया, पद्माकर मूल्य, नलिनी गहलोत और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।